ओम शांति। जब परिवार में उच्च संस्कारों की संपदा भरी होती है तो लौकिक या अलौकिक जीवन विभिन्न योग्यताओं से भरपूर होता है और सुखमय होता है। ऐसे ही विभिन्न योग्यताओं से परिपूर्ण हाजी का पाठ पक्का करने वाली सुखमय संसार के निर्माण में अतुलनीय योगदान करने वाली सरस्वती स्वरूपा आदरणीय दीदी पुष्पा जी हम सबके समक्ष हैं। हम सहृदय आपका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आपका जन्म दिल्ली के एक सांस्कारिक परिवार में हुआ। भगवान ने विशेष योग्यताओं से आपकी झोली भरकर आपकी लौकिक पढ़ाई पूरी करने में सहयोग किया ताकि आप विशेष रूप से इस बेहद की सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए साक्षात्कार स्वरूप बने। 1976 में अपनी लौकिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आपने पूर्णतया अपना हाथ प्राणप्रिय बाबा को सौंप दिया। वर्तमान में आप दिल्ली पांडव भवन एवं संबंधित सेवा केंद्रों की निर्देशिका हैं एवं जूरिस्ट विंग की नॉर्थ इंडिया की कोऑर्डिनेटर हैं। एक समर्थ विभूति ही बता सकती है कि खुशनुमा चेहरा चलन मिजाज कैसे हो आदरणीय दीदी जी।
ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति। प्यारे बाप दादा का हम बच्चों को ये विशेष कहना है, बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों का चेहरा ऐसा हो जो सेवा करने वाला हो, चलन ऐसी हो जो सेवा करे, तो अवश्य ही बाप दादा ये चाहते हैं कि हमारी चलन, हमारा चेहरा, हमारा मिजाज अर्थात स्वभाव, जिससे वैसा व्यवहार ऐसा हो जो सदा खुश रहने वाला हो और औरों को भी खुश करने वाला हो। तो आज आप सब इस समय अपने आप से अंदर झांक कर देखना, सोचना कि सचमुच मैं आत्मा ऐसे खुशनुमा स्वभाव वाली हूं और मेरे व्यवहार से, मेरे कर्म से अर्थात चाल चलन से अन्यों को भी खुशी अनुभव हो। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों का जीवन है और जहां प्राप्ति है नेचुरल वहां खुशी है। खुशी के लिए ही मनुष्य कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहता है। संसार में भी आप देखो कितनी मेहनत करते हैं थोड़ी सी खुशी को पाने के लिए, करते हैं ना। और आप सब जानते हैं कि खुशी की तो वैल्यू भी बहुत अपरंपार है, इसलिए कहते हैं खुशी सबसे बड़ा खजाना है। सब जानते हैं ये बात, हा? सबसे बड़ी खुराक है, सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप सोचिए जो सबसे बड़ा खजाना हो और वो मिल रहा हो, हमारे पास भी हो और हम उसे बीच बीच में खो दें, ये कैसा लगता है। जिसको हम कह रहे सबसे बड़ा खजाना है, छोटा खजाना भी मनुष्य खोना नहीं चाहता। खोना चाहता है आपका इस समय यहाँ कोई का पर्स रह जाए, मोबाइल रह जाए, यहाँ तक कि पेन भी रह जाए, यहाँ तक कि बाहर बड़ी पड़ी चप्पल भी रह जाए, तो थोड़ी बेचैनी हो जाती है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, धूम मचा देंगे, है ना, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। लेकिन खुशी चली जाए, थोड़ी भी चली जाए, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, बोलो हाँ या ना। जब बाप दादा हमसे पूछते हैं कि खुश हो, तो हम बड़ी खुशी से कहते हैं जी बाबा, और साथ साथ थोड़ा सा दबी दबी आवाज में ये भी कह देते हैं कभी कभी थोड़ा बस, क्योंकि बाप दादा को अच्छा नहीं लगेगा तो हम कहेंगे भी कैसे, नहीं कहेंगे ना, हाँ। लेकिन अंदर अंदर कह रहे होते हैं कभी कभी थोड़ी खुशी कम हो जाती है तो वो अच्छी लगेगी, सोचो जरा, इस हिसाब से सोचिए, क्या ये बात ठीक लगती है माताएं? नहीं लगती। थोड़ा कभी रोना आ भी गया तो हर्जा क्या है, हर्जा नहीं। ऐसे थोड़ा कभी पर्स खो भी गया तो हर्जा क्या है, नहीं अच्छा लगता ना। देखो तो जब थोड़ी सी कोई वस्तु चली जाए, हाँ, कोई मान शान चला जाए, कोई संबंध में कुछ हो जाए, कहीं कुछ नुकसान हो जाए, तो कितना मनुष्य को खराब लगता है। और खुशी जो सबसे बड़ा अनमोल खजाना है, जो हमें बाप दादा ने वरदान रूप में दिया है, हमारा जीवन ही बाबा ने सर्व प्राप्तियों से भरपूर किया है, और छोटी सी कोई बात हमारी खुशी कम कर दे तो ये हमें भी अच्छा नहीं लगता और बाप दादा को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्यारे दादी गुलजार हमेशा हमको ये बात पक्की कराते हैं, हमेशा, कि देखो कुछ भी हो, बात तो बात के साथ है ना, कुछ भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि खुशी एक सूक्ष्म ताकत है, कोई स्थूल चीज नहीं है जिसके जाने का भय हो या किस जिसको हासिल करने के लिए हमें कोई संसारिक तरीका अपनाना पड़े या कोई से मांगनी पड़े या कोई मेहनत करनी पड़े। खुशी कोई स्थूल चीज नहीं है। दुनिया में मनुष्य इसी बात से अनभिज्ञ है, परंतु हम बच्चों ने इस बात को जान भी लिया है और अनुभव भी कर लिया है। लोग खुशी के लिए संसारिक चीजों को ढूंढते हैं, संसारिक व्यक्तियों से, साधनों से, समझते हैं हमें खुशी मिल जाएगी, इसलिए सोचते हैं मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ, मेरे को फलां वस्तु मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। जो भी संसार की बातें हैं, स्थूल प्राप्तियां हैं, उसकी तरफ ध्यान बार बार मनुष्य का जाता है और उसे हासिल करने के लिए क्या नहीं करते रहते हैं, कितनी मेहनत करते रहते हैं। फिर देखो वो चीज आज है कल खराब हो जाती है, कोई संबंध है आज अच्छा है कल क्या हो जाता है, ये भी आप देख ही रहे हैं सारी दुनिया के अंदर, आप सबको भी अपने लौकिक परिवारों में ये अनुभव होता ही रहता है। आज आपका कोई दोस्त बड़ा फेथफुल है और आप बड़े खुश हैं, और कल वही धोखा दे देता है तो बिल्कुल निराश हो जाते हैं, एकदम उदास हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, कईयों को तो हार्ट अटैक तक हो जाता है कि जिसके लिए मैंने सारी उम्र साथ दिया उसने आज मुझे धोखा दे दिया, हाँ, कोई ऐसी चीज है जिसकी प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भी ऐसे हो जाता है। तो मनुष्य खुशी को व्यक्तियों में, साधनों में, हाँ, चीजों में ढूंढता रहता है, तो थोड़ी देर हो जाती है खुशी, जब वो इच्छा पूरी होती है फिर देखो तो वैसे ही की वैसा। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये अच्छी तरह से समझा भी दिया है और हम सब अनुभव भी करते हैं कि खुशी कोई स्थूल चीजों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सूक्ष्म प्राप्ति है। अंतर आत्मा इसका अनुभव करती है और अंतर आत्मा इस खजाने से स्वयं को परिपूर्ण करती है और ये हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ खजाना है जो प्यारे बाप दादा हमें जो सूक्ष्म रूहानी प्राप्तियां कराते हैं उसके फल स्वरूप है। कोई स्थूल बातों के फल स्वरूप ये नहीं है। चलो आज आपको किसी ने कह दिया आप बड़े अच्छे हैं, आपको खुशी हो गई, और कल किसी ने कह दिया कि नहीं ये तो अच्छे नहीं है, तो खुशी गायब हो जाए। ये कैसी खुशी है आप सोचो। पर बाबा हम बच्चों को आत्मा को भरपूर करते हैं, हमारी आत्मा के अंदर वह सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, ज्ञान का खजाना देते हैं, जिसके आधार से हमारी आत्मा भरपूर होती है और फल स्वरूप हम सदा खुश रहते हैं। तो हमारा नेचुरल व्यवहार ऐसा हो जाए, खुशनुमा मिजाज ऐसा हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मुख्य रूप से क्या पुरुषार्थ करना होगा? आप में से किसको अभी ये बात क्लियर हो रही है, टच हो रहा है, क्या करना होगा? अपने रूहानी प्राप्तियों को अपने अंतर आत्मा के अंदर भरना होगा। जितना जितना हम बाबा से वो रूहानी खजाने भरपूर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी अंतर आत्मा भरपूर होने से खुश रहेगी। जैसे कहा जाता है ना कि देवताओं का जीवन सदा हर्षित होता है, सदा खुशनुमा होता है। क्यों देवताओं का जीवन सदा खुशनुमा होता है? इसलिए देवताओं के पास जाके सब कुछ मांगते हैं, क्योंकि देवताओं की अंतर आत्मा भरपूर है। उनकी अंतर आत्मा शक्तियों से, पवित्रता से, सुख से, प्रेम के गुण से, सर्वदैवी गुणों से भरपूर है और इसलिए वो सदा हर्षित रहते हैं। और तभी आप देखते हैं देवताओं की जड़ मूर्तियों का चेहरा भी ऐसा बनाते हैं। अगर कोई आर्टिस्ट उनके चेहरे के फीचर्स में कहीं जरा सा भी, थोड़ा भी निशान ऐसा हो जाए कि उनकी मुस्कुराहट कम आभास हो, तो कहते ये मूर्ति ठीक नहीं बनी हुई, कि इनके चेहरे में जो एक मुस्कुराहट की फीलिंग आनी चाहिए देख करके, और देखते ही हमारा चेहरा भी मुस्कुराने लगता है। हाँ, उनके फीचर्स भी, नैन भी ऐसे बनाते हैं जिनसे स्नेह टपक रहा है, खुशी टपक रही है। देवियों का भी देखते हो ना ऐसे ही बनाते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण का भी देखो ऐसे बनाते हैं, राधे कृष्ण का भी देखो ऐसा बनाते हैं। तो ये किसकी यादगार है? आपकी ही यादगार है ना। तो देवताई जीवन में जो ये फीचर्स हमको मिलेंगे तो वो हम इस समय ही अपनी अंतरात्मा के अंदर वो सब क्वालिटीज भर रहे हैं, तो हमारे वो संस्कार खुश रहने के बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो जो हमारे अंदर आत्मा में वो संस्कार बन रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसका ही स्वरूप हमारा चेहरा है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने किसी थोड़ी देर के लिए बड़ी स्माइलिंग वो कर ली, वो तो दुनिया में भी लोग कर लेते हैं, लेकिन कितनी देर कर पाते हैं, कितने लोगों से कर पाते हैं, हर एक से नहीं कर पाते हैं। किसको देख के तो बड़ी अच्छी स्माइल कर देंगे और किसको देख के तो बेचारे एकदम कैसा हो जाएंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि अंतर आत्मा में वो खुशी का संस्कार नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है। भले बाहरी रूप से एक्टिंग कर ली, आजकल तो खुश रहने के और भी तरीके अपनाते रहते हैं, परंतु बाप दादा ने हम बच्चों के अंदर अंतर आत्मा के अंदर वो क्वालिटी भरी है। जैसे आप देखो कोई चीज क्वालिटी वाली होती है तो अपने आप दिखाई देता है कि ये चीज बढ़िया है, इसलिए जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, क्वालिटी की चीज बनाती हैं, और वो देखते ही चीज बोलती है कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, सस्ती नहीं है। भले रंग रूप वही होगा, उसकी इमिटेशन वाली चीज भी उसी कलर की होगी और उसी शाइनिंग भी डाल देंगे, फिर भी देखेंगे तो एकदम अंतर लगेगा। तो उसका रूप ही वैसा आ जाता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग, कोई भी चीज होती है। तो ऐसे ही हमारा चेहरा खुशनुमा सदा रहे, चाहे कोई भी बात हो, कैसी भी बात हो, तो वह तब होगा जब हमारी अंतर आत्मा अंदर से अपने को क्वालिफाइड करती जाएगी, क्वालिटीज भरती जाएगी। क्योंकि हमारी खुशी का आधार कोई चीजें नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो वैसे भी ये सारी दुनिया पुरानी है, ये भी हम समझ गए हैं। इनसे जो मिलेगा वो सब देखने में अच्छा नया भी हो, लेकिन है तो सब जड़जड़ी भूत ना, तमो प्रधान ना, नष्ट होने वाला ना, और टेम्परेरी ना, परिवर्तन होने वाला ना। तो हमारी खुशी जो है वो हमारी आत्मा की सतो प्रधानता पर है, गुणों पर आधारित है। दुनिया में आज इसीलिए मनुष्य थोड़ी देर देखो खुश होते हैं, थोड़ी देर में देखो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उनकी खुशी का आधार वस्तु व्यक्ति साधन है। एक बार एक माता ने अपने पास पैसे जोड़ जोड़ के, और अच्छे घर की थी, पैसे वाले घर की थी, और उसकी इच्छा थी मेरे पास एक ऐसा डायमंड का सेट हो बहुत महंगा, तो जो दूसरे के पास ना हो। उसने आखिर बना लिया, उसको बड़ी खुशी हुई, इतनी बेहद खुश की बात मत पूछो कि मेरी इच्छा पूरी हो गई। और वो उसके अभी आया ही था सेट, और एक पार्टी उनकी होनी थी, बड़ी हाई फाई पार्टी थी। उसने सोचा मैं ये पहन के जाऊंगी और मैं सबसे अच्छी लगूंगी, सब मेरी तरफ ध्यान जाता ना, इसीलिए पहनते हैं। अंदर से उसको बड़ी खुशी चढ़ी हुई थी, तो अपने पति के साथ परिवार के साथ वो गई पार्टी में सज धज के, और खुशी चेहरा ऐसे उसका खुशी से बहुत अच्छी तरह देख करके भी दूसरे को लगे कि ये तो बड़ी खुश है आज। उसका पति भी कहे वाह वाह, आज तो आप ऐसे लग रहे हैं जैसे जमीन पर आपके पांव ही नहीं टिक रहे। तो जब वो पार्टी में एंटर की तो तुरंत 2 मिनट बाद ही उसका चेहरा उतर गया। तो उसके पति ने देखा इसको क्या हो गया, अभी तो ये इतनी खुश लग रही थी, बात मत पूछो, और ये इसका चेहरा एकदम लटक क्यों गया। तो उसने पूछा, लेकिन पूछने से के पहले ही एकदम उसकी आंखों में, उसकी पत्नी की आंखों में ऐसे आंसू भरे हुए, क्योंकि उसी ही पार्टी में उसने उसी समय एक दूसरी माता को देखा कि सेम वो भी वैसा ही सेट पहन के आई हुई थी। तो उसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो गई। अब आप सोचो, तो उसकी खुशी का आधार क्या बना हुआ था, हाँ? सोचो जरा, क्या उसके अंदर आ गया उस टाइम जो इतना महंगा सेट पहन के उससे उसकी इतनी खुशी बढ़ी हुई थी। सेट तो अभी भी उसके गले में था, कोई किसी ने उससे ले नहीं लिया था, कोई छीना नहीं गया था, कोई ने कोई चोरी नहीं किया था, वो तो अभी भी उसके पास है, उसके गले में ही पड़ा हुआ है। लेकिन दो मिनट में उसकी खुशी रफू चक्कर, क्योंकि दूसरे को भी देख लिया कि इसके भी पास है, तो उसकी वैल्यू उसको चली गई एकदम। क्यों? क्योंकि अंदर में जो उसके सोच था, अंदर में जो उसका संस्कार था आत्मा का, वो कौन सा था? वो ईर्ष्या वाला था, वो कंपैरिजन वाला था, वो मान शान की इच्छा वाला था, वो दूसरे को नीचा दिखाने वाला था। तो ऐसे संस्कारों के कारण भी खुशी गायब हो जाती है। यही हम ब्राह्मण बच्चों को अपने अंदर झांकना है, रियलाइज करना है। बाप दादा यही हमें बार बार महसूस कराते हैं कि बच्चे आपका ये जीवन बहुत ऊंचा है, साधारण नहीं है। आपकी खुशी का आधार ये पुराना संसार नहीं है, ये पुराने संबंध नहीं है, ये आज मेरे को बेटे ने बड़ा रिगार्ड दिया, दोस्त ने बड़ा मान दिया, फलाने ने मेरी बड़ी सेवा की, मुझे बड़ा पूछा तो मैं खुश हूं, और थोड़ा सा किसी ने नहीं पूछा तो मेरी अवस्था नीचे आ जाए, कोई इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, चाहे वो कैसी भी इच्छा है, क्योंकि हर एक की इच्छा भी सोच भी अपने अपने संस्कारों के अनुसार होता है, अलग अलग होता है। किसी को उसी बात से कोई को नुकसान हो तो दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी को तो हार्ट अटैक भी आ जाएगा। तो वो भी हर एक का सोच स्वभाव संस्कार भिन्न भिन्न है। बाप दादा हम बच्चों को यही बात समझाते हैं कि ये जो पुरानी दुनिया की बातें हैं, पुरानी दुनिया की चीजें हैं, पुराने स्वभाव संस्कार हैं, ये पुराने संबंध हैं, ये खुशी लाने वाले नहीं हैं, और इनका इफेक्ट कभी भी हमारी खुशी छीन लेता है। जिसको बाबा कहते हैं ना, माया खुशी ले ना जाए, हाँ ये ध्यान रखना, माया चोरनी बनके गड़बड़ ना कर जाए, ये ध्यान रखना। तो वो वही कोई ना कोई ऐसा संस्कार या इच्छा हमारी खुशी को कम कर देता है। तो प्यारे बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे कि अपने अंदर से अपनी आत्मा को ऐसा शक्तिशाली बनाओ और प्राप्तियों से भरपूर करो। जब हम अंदर से स्वयं रूहानी प्राप्तियों से खजानों से भरपूर होंगे तो हमें संसारिक कोई भी बातें हिला नहीं सकती हैं। फिर कोई भी इच्छाएं हमें अपनी तरफ खींच नहीं सकती हैं, डगमगा नहीं सकती हैं, तो खुशी सदा कायम रहेगी। हमारा स्लोगन भी है, बाप दादा कहते हैं, जो संतुष्ट आत्मा है वो सदा, हाँ बोलिए, सबको याद होगा, याद नहीं है? प्रसन्न कौन रह सकता है? जो सदा संतुष्ट है। संतुष्टता से ही प्रसन्नता है। अगर संतुष्टता में कमी होगी तो प्रसन्नता में भी कमी होगी, और प्रसन्नता में कमी होगी तो चेहरा कैसा लगता है? चेहरा अपने आप बोलता है, बिना बोले भी बोलता है। कहा जाता है ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हमारे मन में क्या चल रहा है वो चेहरे पर आ जाता है। अब मान लीजिए हमारे मन में कोई दुविधा है, तो चेहरा कैसा होगा बोलो? दुविधा वाला होगा ना या नहीं होगा? ऑटोमेटिकली होगा ना। अगर हमारे मन में कोई नेगेटिविटी है, कोई भी आपका उल्टा संकल्प चल पड़ता है, तो चेहरे पर कैसा होगा? चेहरा खुशनुमा होगा? हो सकता है, जरूर है। वो नेगेटिव सोच चेहरे पर आता है और यहां भी माथे पे भी लाइनें बन जाती है, हाँ, अपने आप बन जाती है। तो आवश्यक है कि हम अपनी मनोस्थिति को चेक करें कि कभी भी मेरा मन दुविधा में ना आए, हलचल में ना आए, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी में ना आए। और इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि खुशी का सबसे जो वास्तविक स्थान है, जैसे आप अन्य खजाने संभाल के रखते हो ना, हाँ, स्थूल खजाने रखते हैं ना आप, जो बहुत महंगी चीज होगी उसको कहाँ रखोगे? लॉकर में जाके रखोगे, हाँ, चोर भी लेके ना जाए। यहाँ भी अगर रखोगे तो ऐसी जगह पे संभाल के रखोगे जहां से कोई मेरे बिना पूछे ले ना पाए, संभाल के रखते हैं ना। तो खुशी का भी जो प्रॉपर स्थान है वो हमारा अंतर मन है। तो जैसे ही मन में कुछ गड़बड़ होती है ना, बस खुशी हमारी कम हो जाती है। वो लॉकर खुलता है ना जैसे ही, हाँ, माया उसको ले जाती है। ये बहुत आवश्यक है। कहते हैं एक बार देवताओं के लिए कहते हैं ना, खुशी उनके पास सदा रहती थी, हाँ, खुशी सबसे बड़ा अनमोल खजाना देवताओं के पास ही रहता था। तो देवताएं आपस में बैठे थे तो उन्होंने ये फाइनल किया कि ये सबसे वैल्यूएबल है और इसलिए इसको ऐसी जगह देनी चाहिए जो कोई भी ले ना सके इसको। तो बड़ा आपस में विचार किया कि वो कौन सी जगह होनी चाहिए जहां से कोई भी इसको ले ना सके और हमारे पास कायम रहे। तो कोई ने कुछ विचार दिया, कोई ने कुछ विचार दिया, हाँ, कोई ने कहा सागर के बिल्कुल नीचे 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 का, वहां भी मनुष्य पहुंच सकता है, कोई भी पहुंच सकता है, का हिमालय के बिल्कुल चोटी पे का वहां भी पहुंच सकता है, कहां इसको रखा जाए। तो यही फाइनल हुआ कि इसको ऐसी जगह रखा जाए जहां कोई झांक भी ना सके और वो सबसे प्राइवेट जगह है मनुष्य आत्मा का मन, अंतर आत्मा के अंदर। मन आत्मा की शक्ति है ना, मन आत्मा का सबसे पहला सूक्ष्म और ऐसी शक्ति काम करने वाली है। क्योंकि मनुष्य आज इतना भूला हुआ हो गया है और इतना बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गया है कि वो हमेशा बाहर की तरफ देखता है, अंदर की तरफ कभी नहीं देखता। हर समय उसकी आंखें, हाँ, ये मकान कैसा है, ये दुकान कैसी है, ये वस्तु कैसी है, ये गहना कैसा है, ये कार कैसी है, ये चीजें कैसी हैं, ये व्यक्ति कैसा है, इसने पहना क्या है, ये खाता क्या है, हमेशा उसका ध्यान बाहर की तरफ रहता है हमेशा। और इसलिए या तो दूसरों की तरफ या अपने शरीर की तरफ रहता है। तो इस कारण से भी अंतर मन बहुत खाली हो गया है। तो प्यारे शिव बाबा हम बच्चों को ये राज आकर खोल देते हैं, ये सच्चाई बता देते हैं कि बच्चे ये जो खुशी का खजाना है ना, वो आप अपने अंदर कायम रखो, बाहर नहीं ढूंढो। पहले तो ये पता ही नहीं थी बात, जैसे दुनिया वाले बाहर ढूंढ रहे हैं तो सब बाहर ढूंढ रहे थे। आप भी क्या करते होंगे, चाहे आपको ज्ञान में आए चलो 2 साल हुए हो, 20 साल भी हुए हो, जितना भी समय हुआ, उससे पहले बाहर ही देखते थे ना। पर बाबा ने हम बच्चों को ये सच्चाई बता दी, बच्चे ये खजाना आपको अपने अंतर मन में रखना है, बाहर नहीं, किसी वस्तुओं संबंधों में नहीं। और ये खजाना असीम है, थोड़ा सा नहीं है, उस थोड़े से में ही, जैसे डायमंड की कॉस्ट लाखों लाखों होती है लेकिन वो फिर भी स्थूल है, पर हमारी खुशी जो है वो इतनी सूक्ष्म शक्ति, इतना सूक्ष्म कीमती खजाना है जिसकी कीमत भी नहीं आकी जा सकती। कि अगर कोई मनुष्य बेचने भी लगे और दूसरा कोई कहे कि मुझे करोड़ों में आपको देता हूं और खुशी अपनी मुझे दे दो, क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव है नहीं है। फिर तो जिसके पास करोड़ होंगे वो खुश दिखता और जिसके पास नहीं है वो नहीं दिखता। पर हम तो बाबा के बच्चे बोलो कितने खुशनुमा दिखते हैं, कितने खुशनुमा दिखते हैं। वो अरबपति करोड़पति तो बेचारा देख रहे हो, हाँ, होते हुए भी उसकी चिंता में है, उसकी संभाल में है, उसके लिए दांव पेंच उसको रखने पड़ते हैं, क्या क्या सोच करना पड़ता है, क्या क्या तरीके अपनाने पड़ते हैं, चाहे लेने के लिए, चाहे संभालने के लिए, चाहे देने के लिए भी, बेचारे कितनी चिंता में आ जाते हैं। हाँ? और हम बाबा के बच्चे बेफिकर बादशाह कि उसको कोई ले भी नहीं सकता, ऐसे ले सकता आपकी खुशी कोई? कोई ऐसे कोई नहीं ले सकता। हाँ? आपके पास ही कायम रहेगी, कोई उसे छीन नहीं सकता है। तो बाबा ने हम बच्चों को संगम युग पर सबसे बड़ा ऐसा खजाना दिया है, मैं तो कहूंगी ऐसा सबसे बड़ा सुख दिया है, जिस सुख में सब सुख समाये हुए हैं, क्योंकि हम सदा खुश हैं। खुशी ऐसी अनमोल चीज है, चीज नहीं शक्ति है, मैं ये कहूंगी। हाँ, दुनिया वाले उसको चीज कहते हैं, परंतु ऐसी अनमोल शक्ति है, पावर है। हाँ, ऐसी अनमोल हमारे लिए खजाना है कि जिसे कोई भी हमारे से ले नहीं सकता। तो ये हमारे जीवन के अंदर सदा रहे, तो ये बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कि मैं आत्मा अपने को सदा संतुष्ट करूं, और ब्राह्मण संतुष्ट तब होता है। हम ब्राह्मणों की संतुष्टता किस बात में छिपी है कि जितना जितना प्यारे बाप दादा हमें जो कहते हैं हम उस अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारी हर बात के अंदर हमें खुशी अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं अपने जीवन को एक लक्ष्य के अनुसार चला रहे हैं। हम लक्ष्यहीन आत्माएं नहीं हैं, सारा संसार लक्ष्यहीन है वास्तव में, क्योंकि उनका लक्ष्य संसारिक है, सिर्फ खाना पीना कमाना, और उसके लिए चाहे ये सीट लेनी है, ये बिजनेस करना है, ये पढ़ना है, ये बनना है, ये सब है उसके आधार। परंतु हमारा लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ है कि हम नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन रहे हैं, जिस लक्ष्य के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, क्योंकि उससे हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, और जिससे हमारी आत्मा भरपूर होती है। क्योंकि खुशी का आधार, जैसा मैं आपको पहले बता रही हूं, कि हमारी आत्मा की परफेक्शन है। जितने जितने हम अपने अंदर गुण भरते जाएंगे, फलस्वरूप हम खुश रहेंगे, अर्थात संतुष्ट रहेंगे। तभी बाबा कहते हैं कभी भी असंतुष्टता ना आए, और वो हमारा जितना पुरुषार्थ चलता है ज्ञान का, योग का, धारणा का और सेवा का ऑटोमेटिकली उसके फल स्वरूप हम खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान एक बल है। और वो क्यों बल है? क्योंकि ज्ञान भी अपने आप में सबसे बड़ा खजाना है। इसीलिए कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। अब वो समझते हैं कि संसारिक नॉलेज ली और संसारिक इनकम कमाई, और जब इनकम आई तो खुशी हुई। और हमने कौन सी नॉलेज ली? जो ज्ञान के सागर त्रिकालदर्शी भगवान ने हमको दी। तो जो उस नॉलेज से कमाई है वो कौन सी कमाई है? वो विनाशी कमाई नहीं है, वो परिवर्तन होने वाली कमाई नहीं है, वो थोड़ी कमाई नहीं है, वो हलचल वाली अस्थाई कमाई नहीं है। लेकिन ज्ञान से हम आत्माएं जो कमाई जमा कर रहे हैं वो जन्म जन्मांतर के सुख पाने की कमाई जमा कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो हम रोज ज्ञान बाबा से लेते हैं, मुरली पढ़ते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ खजाना है, उससे हमारी अंतर आत्मा भरपूर होती है, हमारी कमाई होती है। और इस कमाई की आत्मा को ताकत मिलती है और उसके फल स्वरूप हम खुश रहते हैं। तो इसका हमारी खुशी से बड़ा गहरा कनेक्शन है। कई बार हम ब्राह्मण बच्चे इसको सिर्फ साधारण रूप से ले लेते हैं। हम सोचते हैं अच्छा मुरली पढ़नी तो है, मुरली सुननी तो है, मैंने सुन ली, मैंने पढ़ ली, लेकिन ये जो मैंने मुरली पढ़ी और सुनी, क्या सचमुच मैंने ये अनुभव किया कि मेरी बहुत बड़ी कमाई हुई है? और कमाई खुशी दिलाती है। कोई को भी आप देख लो, कोई को भी आप देख लो, कमाई ऑटोमेटिकली खुशी दिलाती है। क्योंकि कमाई से स्ट्रेंथ बढ़ती है। जैसे स्थूल में कमाई से मनुष्य समझता है मैं बहुत पैसे वाला हूं, हाँ, तो उसको नशा रहता है ना। और हमारी ये कमाई तो अविनाशी है, बहुत शक्तिशाली है, जिसका प्रभाव न सिर्फ इस जन्म पर बल्कि हमारे 21 जन्मों के ऊपर पड़ता है। जो बाबा कहते हैं आपको अपने जीवन को चलाने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, चिंता तो छोड़ो, कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो वो कहां से हम ऐसा जमा करके जाएंगे? अभी तो कर रहे हैं, अभी ही कर रहे हैं। हमारी जितनी दादियां हैं, बड़े भाई हैं, वो मुरली की स्टडी इतनी डीपली करते हैं। और दादियों को आपने देखा है, ना सिर्फ वो पढ़ती और सुनाती हैं, बल्कि कितनी बार उसका वर्णन करती हैं। और जब टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं, चाहे अमृत वेला हो चाहे रात्रि हो। क्यों? क्योंकि वो सोर्स है हमारी कमाई का। आत्मा के अंदर वो ज्ञान का बल भरता है, जिससे आत्मा की समर्थ बढ़ती है। और समर्थता से ही हम संतुष्ट रहते हैं, और संतुष्टता से नेचुरल हमारे अंदर प्रसन्नता आती है। तो हमारी जो खुशी है वो नेचुरल है, क्योंकि हम ज्ञान का हर समय अपने जीवन के अंदर, बाबा हमें रोज वरदान देते हैं, रोज हम मुरली सुनते हैं, तो हर समय हमारे जीवन के अंदर वो ज्ञान का मंथन और स्वरूप चलता है। तो जब वो हमारा स्वरूप रहता है तो खुशी भी ऑटोमेटिकली रहती है। हमें खुद को खुश करने के लिए कोई साधन अपनाने की जरूरत नहीं है, कोई तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई पॉइंट से ही सिर्फ होगी, नेचुरल, क्योंकि आत्मा ज्ञान खजाने से भरपूर है। और इसी प्रकार से बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे अपने बुद्धि का योग मेरे साथ रखो। तो जब बुद्धि का योग ही खुशियों के सागर के साथ होगा, तो बुद्धि पर किसी दूसरी बात का इफेक्ट आएगा ही नहीं। जब संसारिक कोई बातें होती हैं, आप लोग अक्सर कई बार देखा गया है कि अवस्था थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है ना, तो भाई बहन सुनाते हैं, बहन जी ऐसे तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस बात ने मेरी सारी अवस्था खराब कर दी, मेरी खुशी चली गई। अब ऐसा क्यों हुआ? हाँ, ऐसा क्यों हुआ? या उदास हो गए, रोना आ गया, ऐसा क्यों हुआ? आपने सोचा कभी गहराई से, मुझे रोना क्यों आया, मेरी खुशी क्यों गई? हाँ, कई बार माताएं सुनाती हैं कितने कितने दिन तक उसका असर रहता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम ब्राह्मण बच्चे बाबा के जो सदा भरपूर हैं अंदर से, बाबा ने हम बच्चों को जो खजाना दिया है, हमारा बुद्धि का कनेक्शन खुशियों के सागर के साथ है, तो वो बात हमारे ऊपर असर ना करे। ये प्रैक्टिकल हमको अपने जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आप सदा प्रसन्न रह पाएंगे। आप प्रसन्न हैं और वो बात आपकी प्रसन्नता ले गई, क्यों ले गई ये सोचने की जरूरत है या नहीं? और अक्सर यही कहते हैं ना, ऐसे तो मैं खुश रहती हूं, वैसे तो मैं सदा ही खुश हूं, पर ये जो कारण बना इसलिए ऐसा हुआ। फिर अच्छा चलो, हाँ दादी समझा देगी, हाँ दीदी समझा देगी कि नहीं आपको ऐसा सोचना नहीं चाहिए, आप ऐसे सोचो। हाँ, तो फिर क्या उत्तर देते हैं, फिर क्या उत्तर देते हैं? आप सबके पास उत्तर है, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर एक बहुत प्यारा प्यारा उत्तर देते हैं, देते हैं ना प्यारा प्यारा उत्तर। तो वो भी वास्तव में हमारी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी ही होती है, भले हम बहाना कोई सा भी सुना देते हैं। अवश्य कहीं मेरी सहन करने की शक्ति कम है, मैं नहीं कर पाई, तब तो ऐसा हुआ ना, या मेरे में हाँ विल पावर कम है, तब तो ऐसा हुआ ना। अगर सचमुच मेरी शक्ति पूरी होती तो ऐसा नहीं होता। और कई बार आप ऐसा भी अनुभव सुनाते हैं कि इतनी बड़ी बात थी लेकिन मैं फिर भी निश्चिंत रही, खुशी रही, दादी मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो कहाँ से आई पावर? तो है ना पावर। तो जब हम ज्ञान को अपना बल बना लेते हैं, योग को अपना बल बना लेते हैं, बुद्धि हमारी बाबा से लगी ही होती है, तो वो कोई भी बात हमारे ऊपर असर नहीं करती। एक यंग माता थी, 30-35 साल की होगी, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया और ऐसे हालातों में छोड़ा, वो कहानी लंबी है, वो मैं नहीं सुनाऊंगी अभी, जो सचमुच बहुत दर्दनाक था। निर्दोष पति उसका, कैसे उसका मर्डर किया गया सचमुच, और उसको ज्ञान में चले अभी उस माता को 1 वर्ष हुआ था सिर्फ। तो उस माता की कमाल थी उस समय सचमुच, हमने भी वो दृश्य देख करके सब रो रहे, कोलाहल मचा हुआ है, लेकिन वो माता उसको सब रुलाने वाले भाई भाभियां, क्या रिश्तेदारी, क्या आस पड़ोस, मैं बता नहीं सकती वो सीन, हम भी उस समय वहां पहुंचे हुए थे। वो माता एकदम इतनी उस समय उसके अंदर बाबा की भी मदद होती है, ये भी हम अनुभव कर रहे थे, बाबा की मदद और शक्ति के बिना संभव नहीं है। वो माता एकदम शांत, और ना सिर्फ शांत बल्कि हरेक को कहे कि नहीं, ये जो भी है ये ड्रामा में कुछ राज है, हरेक को ये कहे। और उसने बाद में कहा, बहन जी अगर मैं बाबा की बच्ची नहीं बनी होती तो मैं इसके साथ ही जलकर मरती, ये बाबा ने मुझे शक्ति दी जो मेरे को एक भी आंसू नहीं आया उस समय, और ये संभव नहीं था। सचमुच मैं खुद अपने अनुभव से बताती हूँ, दिल भर भर के आता ना, जैसे ऐसे वाली स्थिति थी। कंट्रोल करने वाला व्यक्ति भी, दूसरे तो रो रो के चिल्ला रहे थे। हमने नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी वो होगी स्थिति। तो ये कहां से आया? ऐसे समय पर या अन्य, ये तो चलो एक घटना है, कभी घटती है, किसके साथ घटती है, लेकिन सबके साथ जो भी छोटी छोटी बातें भी चाहे होती हैं, चाहे उसमें मान शान जाए, धन जाए, बिजनेस ऊपर नीचे हो, पोजीशन ऊपर नीचे हो, बातें तो यही है ना संसार की, और क्या है। तो बाबा हम बच्चों से ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों की अवस्था उस समय भी ऐसे हो, आगे पीछे तो अच्छी होती है, उस घड़ी भी ऐसे हो कि चेहरा सेवा करे और जितना जितना हम अपना ज्ञान योग का बल जमा करेंगे, दुआओं का बल जमा करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप नेचुरल सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे, जिसके फल स्वरूप चेहरा खुशनुमा दिखाई देगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, ये कोई करने वाली चीज नहीं है। दादियों को आप जब भी देखते हैं किसी भी स्थिति में, चाहे सुबह या शाम, अमृत वेला या रात्रि, सेवा पर हैं या अपने कमरे में हैं, मंच पर हैं या दृष्टि देते हैं, चेहरे पे एक नेचुरल खुशी संतुष्टता झलकती है कि ये संतुष्ट आत्माएं हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप मांग देते हो तो बहुत अच्छा है, आप सेवा करते हो बहुत अच्छा है, आप नहीं करते हो तो भी ड्रामा है, भाग्य हरेक का। तो ये कहां से ऐसा हुआ? इतना ज्ञान योग का बल जमा किया है, दुआओं का बल जमा किया है। तो हम सब ये चाहते तो हैं हम सदा खुश रहें, परंतु अपने अंदर वो दुआओं का बल जमा करें, ज्ञान योग का बल जमा करते जाएं, ऑटोमेटिकली आत्मा अंदर से भरपूर होती जाती है, संपन्न होती जाती है, तो संतुष्ट रहती है, नेचुरल संतुष्ट रहती है। फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा हुआ या वैसा हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके सामने अच्छे और बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं, उससे ऊपर है वो, बिल्कुल ऊपर है। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को कि बच्चे मेरे सदा ऐसे चलन में रहें, ऐसे मिजाज में रहें, बस खुश दिखाई दें। तो दुनिया वाले देख करके स्वतः उनकी अंतरात्मा बोलने लगे कि ये तो बड़े खुश लोग हैं, इनको जरूर कुछ मिला हुआ है, इनके पास ये सदा क्या ऐसी शक्ति है, खजाना है, कभी ये उदास नहीं दिखाई देते। इसलिए खुशी हमारी एक सबसे बड़ी ऐसी ताकत है जो हमारे भी भाग्य को बनाती है, अन्यों के भी भाग्य को बनाती है, और उन दुआओं से हमारे अन्य और पुण्य जमा होते हैं। इसमें बड़ा राज छिपा हुआ है। अगर आप संतुष्ट रहेंगे तो दूसरे कभी आपसे नाराज नहीं होंगे, आप संतुष्ट रहेंगे तो आप कभी किसी से नाराज नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति कभी ना नाराज होता है ना नाराज करता है, तो वो सदा कैसा रहता है, कैसा रहेगा? सदा खुश रहेगा। आप कभी हलचल में नहीं आएंगे क्योंकि भरपूर है अंदर से, जो भरपूर चीज होती है वो टिकी रहती है, अनुभव करते हो ना, कोई भी चीज जो भरी हुई होती है वो टिकी रहती है, वो हिलती नहीं है। तो जब हम अपने को अंदर से रूहानी प्राप्तियों से भरपूर कर लेते हैं तो अवस्था हलचल में नहीं आती, ऐसे नहीं घड़ी में क्या घड़ी में क्या, अभी खुश अभी नाराज, अभी उदास अभी निराश, ये हमारे जीवन से निकल जाना चाहिए। और सचमुच आप सबने जो जीवन में खुशी अनुभव की है और जो चेहरे पे है दूसरे लोगों को अनुभव होती है, तब तो देखो आजकल कितने सभी आकर के सेंटर पर आते हैं, ब्रह्मा कुमारी के पास आते हैं कि हमको डिप्रेशन है, हमें यहाँ ही मेडिटेशन से ठीक होना है। हम उनको कहते पहले डॉक्टर के पास भी जरूर जाओ, कहते डॉक्टर नहीं मेरे को यहाँ भेजा है। तो ये किस चीज का प्रमाण है? हम सबकी खुशी का ही है ना, खुशनुमा चेहरे का ही है ना, हमारे जीवन की प्राप्तियों का ही है ना। तो हम ब्राह्मणों के जीवन में जरा भी कभी ये नहीं आना चाहिए, हलचल निराशा उदासी खत्म गायब हमारी डिक्शनरी से चले जाना चाहिए। हाँ कभी कभी कभी, ऐसे नहीं कि है, लेकिन कभी कभी भी क्यों? इसलिए बाप दादा कभी कभी भी हमारे से ये सुनना नहीं चाहते, सदा चाहते खुश रहें और खुश करें। तो प्यारे बाप दादा के हम सब बहुत बहुत लकीएस्ट बच्चे, सदा अपने भाग्य को बढ़ाने वाले, अपने अंदर खुशी का खजाना सदा अनुभव करते रहें, जो नेचुरल ही हमारे से, हमारे नैनों से, हमारे बोल से, हमारे व्यवहार से हर एक को ये अनुभव हो कि बहुत संतुष्ट आत्मा है, सदा प्रसन्न आत्मा है, और दूसरे भी आपको देख करके खुश हो जाएं, तो आप देखेंगे फिर ये संसार क्या लगेगा, खुशियों का संसार लगेगा, सुखमय संसार लगेगा, और शीघ्र ये संसार सुखमय बनने ही वाला है। तो अपना मिजाज, अपना व्यवहार, अपनी चाल चलन, चेहरा नेचुरल खुशनुमा रहेगा ही रहेगा। ओम शांति। हमारी